तो आपका मूल प्रश्न ये है कि यदि मैं ईश्वर की भक्ति करूं तो आज जहां मैं खड़ा हुआ हूं सोसाइटी में, तो इसमें मेरा क्या इम्प्रूवमेंट होगा या क्या मुझे प्राप्त होगा? क्योंकि गोल तो यह है कि सुख दुख में सम रहने के लिए ईश्वर की उपासना करनी है, लेकिन मुझको उस मार्ग में कहां तक प्राप्ति होगी, यही तो आप जानना चाहते हो। ये तो हम सबका अनुभव ही है कि हम संसार में जो कुछ भी करते हैं उससे हमको सुख मिलते हैं, दुख मिलते हैं, संतोष मिलता है, असंतोष मिलता है, चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, चैन भी मिलता है, बेचैनी भी मिलती है। ये द्वंद्व चक्र हमको अपने कर्म के फल के रूप में देखने को, भोगने को मिलता है। और इसके साथ साथ कुछ दुखदाई वक्त भी हमको जीवन में देखने को मिलता है, जैसे कि शरीर के बुढ़ापे का वक्त है, उसको यदि कोई यंग व्यक्ति याद करे तो वह आसानी से तुलना कर सकता है कि जवानी में जो ताकत है शरीर में कर्म करने की, जो भोग इकट्ठे करने की, बुढ़ापे में वो लाचारी में बदल जाता है। व्यक्ति एक लाचारी महसूस करता है किसी पर डिपेंड होने की कोशिश करता है। तो यदि हम ये बात कह भी दें कि सुख दुख में सम रहने के लिए ईश्वर की उपासना हमको करनी चाहिए, लेकिन फिर भी सुख दुख में सम रहने के लिए आप ईश्वर की उपासना क्यों करोगे, ये बात समझ में नहीं आती। केवल ये शब्द हम दोहरा लें कि सुख दुख में सम रहने के लिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, फिर भी वो बात समझ में नहीं आती। जब तक कि आप अपने बारे में किसी निर्णय पर ना पहुंचे, क्योंकि मैं आज तक अपने बारे में एक ही निर्णय जानता हूं और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और जो कुछ भी शरीर के अंदर है, जैसे शरीर की मशीनरी होती है, उसी प्रकार से ये सारा एक मेरी मशीनरी है जो कार्य कर रही है। लेकिन सत्पुरुष एक दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा संसार का कोई मनुष्य नहीं है जो मरना चाहता हो या जो इस देह को नष्ट करना चाहता हो। सुसाइड करने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो तो एक निराशा की हद है। जब उसको पता लगता है संसार में सुख मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो कहता है संसार में जीने का फायदा क्या है, इसलिए तो मर जाना ही अच्छा है। उनकी बात तो छोड़ दी जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। लेकिन ये इच्छा किसी भी मनुष्य की पूरी नहीं हो सकती, ये मेरे बारे में ट्रुथ है और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो सत्पुरुष कहते हैं तेरे अंदर जो ये इच्छा उठ रही है मैं हमेशा बना रहूं, ये तेरी जो इच्छा है ये तेरी जेन्युइन इच्छा है, ये तेरी इच्छा गलत नहीं है। क्योंकि तू वह चीज है जिसकी डेथ नहीं है, लेकिन तू अपने आप को देह करके जो देख रहा है गलत फहमी के कारण, अज्ञानता के कारण, और तुझको ये एहसास है इस बात का कि देह मर जाती है, वो कभी भी मर सकती है, ये जानता है तू, इसलिए हर तरीके से इसको बचाने की कोशिश करता है। तो हमेशा बने रहने की तेरे अंदर जो नेचुरल इच्छा है ये गलत नहीं है, ये तेरी सही इच्छा है, और ये सारी इच्छाओं में सबसे महान इच्छा है तेरी। ये इच्छा तेरी बन पूरी होती रहे तब तो बाकी इच्छाओं का महत्व है कुछ, यदि यही इच्छा पूरी ना हो तो बाकी इच्छाओं का कोई महत्व ही नहीं। तो सत्पुरुष कहते हैं कि जिस इच्छा पर तेरा सारा जीवन टिका हुआ है वो तेरी इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं सकती, यदि तू सांसारिक तरीके से जीता रहा तो। लेकिन इच्छा तेरी जैनिन है, तो इसलिए वो कहते हैं प्रेमी तू मौत का विचार कर। महाजी कहते नहीं, मौत के विचार को महाजी सत विचार कह रहे हैं। मौत पर विचार करना सत विचार है। क्यों सत विचार है? जो मौत पर विचार करेगा वो सत तक पहुंच जाएगा, वो ट्रुथ तक पहुंच जाएगा, वो जिसको हम ईश्वर कहते हैं वहां तक वो पहुंच जाएगा। ईश्वर उस सत्ता का नाम है जहां मौत नहीं है, जहां केवल जीवन है। इसीलिए मैं उस जीवन की प्राप्ति कर लेता हूं जिसकी सारी जिंदगी मैं शरीर करके डिजायर करता रहा। और दुनिया के किसी बच्चे से भी पूछ लो, किसी बड़े से भी पूछ लो, किसी बूढ़े से भी पूछ लो, ये डिजायर उनकी हाईएस्ट डिजायर है। इसके बाद और डिजायर्स का नंबर आता है। तो बच्चे से भी पूछ लो, तुमको जो भी चीज प्रिय है उसको, मान लिया मोटर ही प्रिय है उसको, नहीं कि मोटर चाहिए या जिंदगी चाहिए, कहेगा पापा कैसी बात करते हो, जिंदगी पहले चाहिए मोटर बाद में चाहिए। तो एक बच्चा भी जानता है कि जिंदगी पहले चाहिए मोटर बाद में चाहिए। तो सबसे बड़ी लड़ाई तो मेरी जिंदगी की है, इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं कभी भी। और सत्पुरुष इसी बात को बता रहे हैं आपको, तू कर क्या रहा है? तो अब बताइए, जिस चीज को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और दुनिया के सारे लोग जानते हैं कि ये देह मर जाती है, तो सत्पुरुष कहते हैं कि देह मरती है इस सत्य का तुझे पता है, लेकिन तू नहीं मरता इस सत्य का तुझे पता नहीं है। अब ये बात किसी साइंसी किताब में नहीं है, ना ज्योग्राफी में, ना हिस्ट्री में, ना कॉमर्स में है, ना इकोनॉमिक्स में, ये बात शास्त्रों में है। जितने भी महान ऋषि हुए, जिसको हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जिसको हम सदगुरु कहते हैं, जो सुख दुख से मुक्त हो गए, सम का मतलब होता है सुख दुख के इफेक्ट से मुक्त हो जाना, और सुख दुख का इफेक्ट आप शरीर करके महसूस करते हो, इसका मतलब शरीर के इफेक्ट से ही मुक्त हो जाना, अर्थात शरीर से ही मुक्त हो जाना। इसका मतलब मैं उस स्थिति में पहुंच जाता हूं कि शरीर की नीड भी मुझे नहीं रहती। उस स्थिति में जाके ये निर्णय होता है कि जो कुछ भी गुरु ने कहा था, जो कुछ भी शास्त्रों में लिखा था, वो तो सत्य है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं आज वो सत्य है। ये देह मिथ्या है, मैं देह नहीं हूं, मैं ये बात आज अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो अब बताइए, जिसका ये अनुभव है जो ये अनुभव कर चुका है उसको आप मास्टर बनाओगे या नहीं बनाओगे, उसको अपना गुरु बनाओगे या नहीं बनाओगे, जो देह के बंधन से मुक्त है, इसी को कहते हैं उसने मृत्यु पर विजय पा ली है। जिसको देह की जरूरत ही नहीं रही उसने मृत्यु पर विजय पा ली है। तो यदि मुझको भी मृत्यु पर विजय चाहिए तो उसको मुझे गुरु बनाना ही पड़ेगा। इसका पूरा विज्ञान है, पूरी साइंस है, जिसको हम अध्यात्म विद्या कहते हैं, जो मौत का इलाज है। दुनिया के किसी वैद्य पर, किसी डॉक्टर पर, किसी साइंटिस्ट के पास मौत का इलाज नहीं है, गुरु के पास मौत का इलाज है। तो इसीलिए वो कहते हैं तू अपने बारे में गफलत में, तू अपने आप को देह करके समझ रहा है और तुझके ये होश नहीं है, देह बीमार भी होगी, देह बूढ़ी भी होगी, देह नष्ट भी होगी, तेरा क्या होगा? दुनिया तो अंधी है, आंख बंद करके चल रही है, उसकी समझ की आंख बंद है, लेकिन गुरु तेरी समझ की आंख खोलना चाहता है। तो इसलिए तुझको तेरा विज्ञान समझा रहा है, वो दुनिया का विज्ञान नहीं समझा रहा है, तेरा विज्ञान समझा रहा है। तू अपने आप बारे में जान, तू है कौन, कहां तू फंसा हुआ है, संसार के देखा देखी चस्के तूने कुछ पाल लिए हैं, उसके लिए इतना कीमती जन्म तू खर्च कर रहा है, और जिसके लिए ये मानव देह मिली थी वो काम भूला पड़ा हुआ है तू। तब जब मैं गुरु के प्रति सिंसियर होता हूं, क्योंकि गुरु मैंने किसी आदमी को नहीं बनाया है, गुरु मैंने चेतन सत्ता को बनाया है, जिसके अंदर मौत नहीं है और जिसके पास मौत से बचने का इलाज है, मैंने उस चेतन सत्ता को गुरु बनाया है। इसलिए महाजी कह रहे हैं, ये बात बार बार कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होय के घटका पाठ उघाड़। इस घट के अंदर ही तेरा मालिक मौजूद है, इस घट के अंदर ही तेरी जीवन सत्ता मौजूद है, जिसको हम जान कहते हैं। तो मोह के कारण तेरा वो गेट बंद है, तू जीवन सत्ता से भेंट नहीं कर सकता। तो गुरु की बात माने, गुरु की बात समझ के उसकी आज्ञा पालन करे और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन तू व्यतीत करे, तब तेरे जीवन में भी वो दिन आ जाएगा जिस अवस्था में गुरु खड़ा है, तू भी खुद गुरु बन जाएगा, अर्थात देह के बंधन से इस देह के रहते रहते मुक्त हो जाएगा। फिर तेरी देह के कोई चार टुकड़े कर दे, तेरी देह को कोई बम से उड़ा दे, तुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, तूने समझ लिया ये मट्टी है, सारी धरती को कोई हजार बम इसमें लगा के उड़ा दे तो धरती को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन धरती को हम जड़ समझते हैं, वो जड़ है, हमारी तुलना में वो जड़ है, जबकि वहां भी चेतन शक्ति मौजूद है, उसी के कारण वो क्रिया कर रही है, लेकिन वैसे वो जड़ है। तो मैं चेतन हूं, मैं जानने वाला हूं, चेतन का मतलब होता है जानने वाला, और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन अपने ही देह का विश्लेषण करूं तो एक भी पार्ट इसमें ऐसा नहीं है पूरी देह में आपकी, कोई साइंटिस्ट कह दे ये है जो जानती है, ये तेरी देह का पुर्जा है जो जानता है, या ये तेरी देह का ऑर्गन है जो जानता है। एक भी आज तक साइंटिस्ट धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसने ये रिसर्च की हो कि इसमें ये ऑर्गन ऐसा है जो जानता है। वो यही कहते हैं सब मिल जाते हैं तो जानता है, उत्तर कोई नहीं है, कंफ्यूजन। गुरु क्लियर कह रहा है, बिल्कुल कह रहा है, इस देह के अंदर जो जानता है उसका नाम जीव है, कहीं उसका नाम जीवात्मा लिखा हुआ है, कहीं उसी का नाम बुद्धि लिखा हुआ है, अलग अलग टर्म्स जो हैं उसी शब्द को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूज की गई है। महाराज जी ने भी कई की हैं, जैसे बुद्धि भी महाराज जी ने जीव के लिए लिखा है कहीं पर, कहीं बुद्धि निश्चय शक्ति के लिए लिखा है। तो इसलिए हमको देखना पड़ता है बुद्धि का वहां पर क्या अर्थ है। तो इसलिए जहां क्लियर नहीं है तो महाराज जी ने क्लियर किया है, खुद ही समता विलास पढ़ के देखो, कह रहे हैं जीव यानी बुद्धि, इसका मतलब वहां पे बुद्धि का अर्थ है जो जानने वाली सत्ता, सोचने वाली सत्ता नहीं। जीव के साथ जब मन मिलता है तब मनन शुरू होता है, तब चिंतन शुरू होता है, और जीव के साथ मन जब शांत हो जाता है तो जीव का ईश्वर से मिलन होता है, वहां चिंतन बंद। तो चिंतन करने की क्रिया जीव की नहीं है, चिंतन करने की क्रिया मन की है। मन के अंदर चिंतन चल रहा है फिर भी मन जड़ है। समझने की बात यह है कि मन के अंदर चिंतन लगातार चल रहा है, जैसे कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस का चक्कर काट रहे हैं, लगातार काट रहे हैं, गति हो रही है वहां पर। लेकिन कोई नहीं कहेगा कि परमाणु जानता है, परमाणु में गति तो है लेकिन परमाणु में जानने की क्षमता नहीं है। जानता मैं हूं परमाणु के बारे में, तो मैं जानने वाली सत्ता हूं, सारी की सारी प्रकृति ये मेरे मुकाबले में जड़ स्वरूप है। मैं सब्जेक्ट हूं, सारी प्रकृति ऑब्जेक्ट है। तो अब बताइए गुरु कौन सा ज्ञान दे रहा है आपको, क्योंकि संसार में ये ज्ञान हमको संसारियों से सुनने को नहीं मिलता, वो इसके बारे में ABCD जानते नहीं है। इसलिए मैं भी उनके साथ रह रहे के अज्ञानी बना जाता हूं, मैं भी वही बातें करता हूं जो वो करते हैं। इसलिए मेरे अंदर इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि मुझे संसार के जीवन में क्या फायदा होगा यदि ईश्वर की याद करूंगा, तो नफा नुकसान की बात करता है, जब ईश्वर की याद करना चाहता है तब भी। तुझको होश ही नहीं है, तेरा शारीरिक जीवन जितना भी संसार में बीत रहा है ये नुकसान ही नुकसान है, इसमें 0.1% फायदा तो तेरा है ही कोई नहीं। तो तू ईश्वर की भक्ति करके और फायदे संसार में चाह रहा है, तू कह क्या रहा है, तुझको होश है? जो तूने आज तक फायदे गिनाए हैं वो तूने नुकसान किया है, तुझे होश ही नहीं इस बात का? सांसारिक जीवन पूरा का पूरा नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि महाजी कह रहे हैं प्रेमी ये देह 5 तत्व की बनी है जिसका नाम है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इस ये बाहर की धरती जिस पर रह रहा है तो ये भी 5 तत्व की बनी है जिसका नाम है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब तक तू देह को अपना स्वरूप समझ रहा है, इसको स्वरूप समझ के जीवन जी रहा है, तो तू इस 5 तत्व के 5 विकारों में अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रात दिन फंसा हुआ है, ये विकार हैं। तो मैं संसार में विकारों की कमाई कर रहा हूं तो ये मेरा नुकसान है या फायदा है? मुझे आज तक किसी ने सिखाया ही नहीं कि संसार के सुख जिसको कहता हूं ये विकारों की कमाई है। तो ये पॉइजन इकट्ठा कर रहा हूं अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी। तो गुरु मुझको बचाने आया है, इस पॉइजन के मुकाबले में वो मुझको अमृत देने आया है। तो जो जीवन है जिसमें चेतना है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जो जानती है, जो समझती है, गुरु मुझको उस सत्ता के साथ एक करना चाहता है और इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है कि मैं ये जड़ देह हूं जो मैं जानता हूं कि ये नाश हो जाती है। और जितने भी दुनिया में आज तक इंसान हुए सबके नाश हो गए, इससे बड़ा प्रमाण मुझे और क्या चाहिए? तो ये मनुष्य जन्म इस नाशवान देह से मुक्त होने के लिए, आप उस अवस्था में पहुंच जाओ जहां आकर आप डंके की चोट पे कह सको मुझे देह नहीं चाहिए, मुझे देह ही नहीं चाहिए। इसलिए महाजी जब रोगी हुए अपनी डेथ से 4 साल पहले और रोग जब उनका ठीक हो गया तो महाजी ने एक ही चीज कही, प्रेमी ये देह संगत की है, अब संगत जैसा चाहे इस देह का उपयोग करे। देखो जो गुरु है जो परमेश्वर है वो इस देह के बारे में क्या कह रहा है। ये देह प्राकृतिक है, ये प्रकृति का अंग है, ये प्रकृति जैसा चाहे इसका इस्तेमाल करे, इनका इससे कोई संबंध नहीं। जीते जी गुरु देह से अलग हो गया। भगत जी से महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेमी इस समय देह ऐसे लग रही है जैसे कोई छाया संग चल रही हो। ये साधारण स्टेटमेंट्स नहीं होते सत्पुरुष, इन बातों पर गहरा विचार करना चाहिए। हम तो कहानी पढ़ लेते ना, लेकिन इस पर विचार करके तो देखो ये गुरु कह क्या रहा है। ये सहज स्वभावी वचन निकल जाते हैं मुख से। आपकी भी जो स्थिति होती है, बड़े खुश होते हो तो कई बार मुंह से वचन निकल जाएगा, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, निकलता है नहीं निकलता है। जो आपकी स्थिति होती है वो शब्दों के रूप में बाहर आ जाती है। तो गुरु की भी जो स्थिति है वो शब्दों के रूप में, वाक्य के रूप में बाहर आ रही है। वो कहते हैं बनारसी इस समय ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई छाया संग चल रही हो। तो अब बताइए मुझे, यदि मैं गुरु की इन बातों पर विचार ना करूं और सत्संग सुनता रहूं, शास्त्र पढ़ता रहूं, तो खाक अध्यात्म विद्या समझ में आएगी मेरी? अध्यात्म विद्या समझनी है तो इन साधारण बातों को समझना पड़ेगा। ये सबसे गहरी, सबसे साधारण लेकिन सबसे गहरी बातें हैं। अध्यात्म विद्या का मूल ही है। जिसने इस बात को नहीं समझा वो ईश्वर भक्ति में गहरा कभी नहीं उतर सकता। कर तो सकता है ईश्वर भक्ति वो, लेकिन इलाज नहीं कर पाएगा अपना। जो बीमारी उसको लगी हुई है उसका इलाज वो नहीं कर पाएगा। तो सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। इसका मतलब क्या है? कोई इंसान धरती पर ऐसा है जो सुख दुख में सम रह सकता हो? कितनी भी प्रैक्टिस कर ले ये असंभव बात है कोई मनुष्य सुख दुख में ईश्वर पूजा करके सम हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है। यहां हर चीज द्वंद्व रूप है, जन्म है तो मौत है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, चैन है तो बेचैनी है, बिना द्वंद्व के तो कोई चीज ही नहीं है तो सारी सृष्टि के अंदर। तो ये सुख दुख में सम कैसे हो जाएगा? इसीलिए सुख दुख में सम रहने के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। मनुष्य बन के तू सुख दुख से मैं सम रहने की कोशिश करेगा तो वो दिन तेरी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं। चाहे तो ये 1,00,000 साल की आयु क्यों ना दे दिया, तू सुख दुख में सम हो ही नहीं सकता। मनुष्य सुख दुख में सम नहीं हो सकता जो अपने आप को देह समझ रहा है। ये सुख दुख में सम रहने की खातिर ईश्वर की उपासना लाजमी है। ये बात जीव से कही जा रही है। जो इस होश में है कि मैं देह के बंधन में जी रहा हूं, जो इस होश में है मैं देह के बंधन में जी रहा हूं, जो इस होश में है, ये बात उसके लिए की जा रही है। क्योंकि सुख दुख का अनुभव देह करके होता है, अपने आप में सुख दुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो अब बताइए, तू जो संसार के लिए जीवन जी रहा है, संपत्ति इकट्ठी कर रहा है, बड़े बड़े प्रमोशंस ले रहा है, बड़े बड़े बिजनेस की रचना कर रहा है, तो ये बेहोशी में तो कर रहा है तू, नादानी में ही तो कर रहा है। फिर कहता है ईश्वर की भक्ति करूंगा तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा, इसलिए तो ऐसा सोच रहा है तू, इसीलिए ऐसा सोच रहा है। तेरे सोचने का आधार ही मिथ्या है, तेरे सोचने का आधार ही गलत है। तो इसीलिए सत्पुरुष की बातों पर यदि गहरा मनन ना किया जाए तो आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते। 10-10 साल उपासना करने के बाद भी यही सोचते रहते हो, अरे कहते थे कि सुख मिलेगा ईश्वर की भक्ति से, आनंद मिलेगा, यहां तो कुछ नहीं मिल रहा, यही सोचोगे। तो इसलिए मां जी लिख कर दे रहे हैं समता विलास में, बिना विवेक और बिना वैराग्य के सही अभ्यास नहीं होता, ईश्वर की सही उपासना भी नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर विवेक नहीं है और वैराग्य नहीं है। और जब विवेक आएगा तो वैराग्य उसके साथ आ जाता है। जैसे कि कोई सुंदर सी मिठाई आपके सामने रख दे तो कितना अट्रैक्शन होता है, और यदि कोई उसका सत्य बता दे इसमें जहर मिला हुआ है तो सारी मिठाई का राग खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपका सारी मिठाई का राग खत्म हो जाएगा तुरंत ही पता लगते ही। वही स्थिति हमारी है, अभी देह से कितना अटैचमेंट है, संसार के भोगों से कितना अटैचमेंट है। इसलिए मां जी कह रहे हैं प्रेमी मौत को याद कर, अरे ये सुख तुझको मौत की तरफ ले जा रहे हैं, बस आने ही वाली है वो, तू कर क्या रहा है, चाहता जिंदगी है, मरना नहीं चाहता तू, मौत तेरे सामने खड़ी हुई है, पता नहीं 2 मिनट में आने वाली है या 2 दिन में आने वाली है, 20 साल में आने वाली है, वक्त का तुझे पता नहीं है, तू उसके प्रति गाफिल है। तो गुरु कह रहा है मौत को याद कर, क्योंकि गुरु जानता है तू जीना चाहता है, सबसे प्रिय तुझको जीवन है, लेकिन संसार के स्वादों में उस जीवन को भी भूले बैठे हुआ है। तेरे जीवन की सबसे कीमती चीज जान है, उसको तो भूले बैठा हुआ है, उसको तो बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। सुख चाहिए तुझे, तो सुख का आधार तो जीवन ही है ना भैया, जीवन है तो सुख भोगते हो ना, जब जीवन ही नहीं बचा तो काय का सुख, काय का दुख, और वो जीवन कोई साधारण चीज नहीं है। ये ऋषि जानता है, वो खाली जीवन ही नहीं है, वो सच्चिदानंद है, उसका नाम है सच्चित आनंद। सत कहते हैं कॉन्शियसनेस को, उसमें चेतना है, उसमें होश है, वो जानने वाली सत्ता है। ये चित है, कॉन्शियसनेस है। और सत किसे कहते हैं, जो चीज नष्ट नहीं होती, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, जो सदैव दायम कायम है, उस सत्ता का नाम है सत। और उसमें ना सुख है ना दुख है, उसमें परम तृप्ति है, वो तृप्ति रूप है, इसीलिए उसको कहते हैं वो आनंद, वो आनंद रूप है। चाहिए तुझे यही, तुझे द्वंद नहीं चाहिए, तुझे निर्द्वंद चाहिए, अद्वैत चाहिए तुझको, आनंद चाहिए जो कभी कम ना हो, तो वो आनंद ईश्वर में है, जो सत्ता कभी नष्ट नहीं होती, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, तुझे यही ऐसी चीज चाहिए जिसमें परिवर्तन ना हो, उसका नाम है सत। और ऐसी सत्ता चाहिए जो जड़ ना हो, जो होश में हो, जो जानने वाली हो, उसका नाम है चित। तो चाहिए तुझको सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, ये संसार में है ही, संसार की कोई एक वस्तु तो बता दो, ये जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है 3 चीजों की, किसी चीज में हो तो बता दो मुझे। तो फिर जो आपको चाहिए वास्तव में वो तो गुरु जानता है, आप तो ये भी नहीं जानते कि मुझे चाहिए क्या, तो पूजा करके कहाँ पहुंचोगे आप? फिर कोई भी पूजा अपना लोगे, कैसी भी अपना लोगे, तो बिना पूर्ण गुरु का पल्ला पकड़े ना पूजा कर पाओगे, ना पूजा का उद्देश्य समझ पाओगे, ना उस मंजिल पर पहुंच जाओगे, पहुंच सकोगे जिसके लिए पूजा कर रहे हैं। हर मामले में आपके अंदर एक कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु का कोई नाम नहीं होता। इसलिए महर्षि रमण की बात याद रखो, वो कह रहे हैं कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है, क्योंकि वही परमेश्वर सत्ता मानव देह के रूप में प्रकट होकर हमारा मार्गदर्शन करती है। तो हम कंफ्यूज होकर उसको एक इंडिविजुअल समझ लेते हैं, ये एक इंडिविजुअल है। और गीता में भगवान कृष्ण साफ करें, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, देखो ईश्वर अजन्मा है और अविनाशी है, जिसका जन्म ही नहीं है तो विनाश कहां से हो जाएगा उसका, क्योंकि वो अजन्मा है इसलिए अविनाशी भी है। और जो चीज अजन्मा अविनाशी है उसके आकार कहां से आ जाएगा? आकार वाली चीज हम सब जानते हैं, पैदा होती है और मिटती भी है। कहते हैं अजो अपि सन अव्यात्मा, अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, भूता नाम ईश्वर अपि सन, सारे प्राणियों का मालिक होने पर भी, मैं जानता हूं मेरा मालिक ईश्वर है, संसार मेरा मालिक नहीं है, वो मेरी रक्षा नहीं कर सकता। प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्माया, मैं अपनी प्रकृति को आधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। तो जो गुरु का देह है, जिससे हमारी भेंट हुई या जिसकी तालीम के संपर्क में हम आए, जिसके ज्ञान के संपर्क में हम आए, जो हमको गाइड कर रही है अपने स्वरूप तक पहुंचाने के लिए, तो वो शरीर योग माया है, ईश्वर की योग माया है। देखने में वो देह है, वो मरती भी है, हम उसको दफन भी कर देते हैं, उसको अग्नि भी लगा देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देह नहीं है, ये ईश्वर सत्ता है। क्योंकि देह गाइड नहीं कर रही है, ईश्वर सत्ता गाइड कर रही है। इसलिए जब ऐसे सत्पुरुष से वाणी प्रकट होती है तो बुद्धि का लेख नहीं होता, वो बुद्धि की रचना नहीं होती। महा जी खुद कह रहे हैं प्रेमी इनको पता नहीं, समाधि में वाणी आ रही है, वो भगत जी लिख रहे हैं, जहां से वाणी आ रही है वो नहीं सुन रहा है, जो लिख रहा है वो सुन रहा है। इसलिए इसको श्रुति कहते हैं, श्रुति का मतलब यह है जो दूसरा सुनता है, कहने वाला नहीं सुनता। तो इसलिए वाणी जब लिखी दी जाती थी, महाजी जब स्नान करके बैठते थे, भगत जी जब पानी लाके देते थे उनको, फिर कहते थे महाराज जी, फिर भगत जी इनको जो इनका सुबह की डाइट थी चाय पी के, फिर कहते थे प्रेमी क्या प्रभु की महिमा प्रकट हुई जरा सुनाओ। अब देखो, अब गुरु सुन रहा है अपनी वाणी खुद। तो जो गलतियां रह जाती थी लिखने में, तो महाराज इसको करेक्ट करा देते थे। तो विचार करो जरा, तो वो सत्ता बोल रही है वाणी के रूप में, जिसको हम श्रुति कहते हैं, जिसको हम वेद कहते हैं, और फिर भी मैं कंफ्यूज रहता हूं, संसारी ज्ञान के चक्र में आके ये भूल जाता हूं। ये तो मनुष्यों का लिखा हुआ ज्ञान है, जो मनुष्य का लिखा हुआ ज्ञान होगा वो तो बंधन में डालेगा आपको, वो तो प्रकृति के बंधन में डालेगा। गुरु ज्ञान है जो आपको प्रकृति के बंधन से मुक्त करेगा। मृत्यु से मुक्त करेगा, मृत्यु से मुक्ति का नाम ही मोक्ष है, आपको अपने ही स्वरूप में स्थित करेगा। तो वो कितना कीमती ज्ञान है, आप संसार उसकी कीमत दे सकता है क्या? इसीलिए जो ऋषि हुए वास्तव में, जो पैगंबर हुए, तो उनके पास क्या था? मोहम्मद साहब के पास क्या था? ईसा मसीह के पास क्या था? महाराज जी के पास क्या था? महर्षि रमण के पास क्या था? रामकृष्ण परमहंस के पास क्या था? शायद 2 रुपए भी तो नहीं निकलेंगे किसी के पास, इनमें से किसी एक के पास 2 रुपए भी नहीं निकलेंगे। और आजकल के गुरु देख लो, करोड़ों का तो बैंक बैलेंस है उनके पास, करोड़ों के जो है उनके चेले हैं। ये गुरु हैं या घंटा लेंगे, लेकिन हम माया में रचे पचे लोग इन्हीं के चरणों में नतमस्तक होते हैं, इन्हीं के गुणगान करते हैं। और तर्क क्या देते हैं, 1 करोड़ लोग मानते हैं मेरे गुरु को। अरे 1 करोड़ लोग मानते हैं, उसमें शक्ति नहीं है तो कैसे मानते हैं? अरे भैया एक्टर को, एक्टर के भी चेले होते हैं 1 करोड़, नाचने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, इनके भी 1 करोड़ चेले होते हैं, तो ये भी गुरु बना लो इनको भी। तो हमारी जो सोच है वो सांसारिक सोच है, संसारी तरीके हमारी सोच के हैं, चाहे गुरु के बारे में हो चाहे किसी के बारे में हो। लेकिन पूर्ण गुरु के संपर्क में जब आते हो, उसके ज्ञान के संपर्क में आते हो और उस पर आप मनन करने को तैयार होते हो, मनन करने को आप तभी तैयार होगे जब उस गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा पक्की होगी कि ये वास्तव में ब्रह्म है। इसलिए इसका जो दिया हुआ ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है, ये सर्वोच्च ज्ञान है जो मुझको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराएगा, जो मुझको सुख दुख के बंधन से मुक्त कराएगा, जो मुझको जीवन देगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं। तो गुरु आपको जीवन देता है और ऐसा जीवन देता है जो सच्चिदानंद है। तो यदि मैं ये प्रश्न पूछूं कि ईश्वर की भक्ति करके मुझको क्या लाभ मिलेगा संसार में, तो ये मेरा अज्ञानता से भरा हुआ प्रश्न है। इसके लिए गुरु नहीं आया, गुरु मैंने इसके लिए धारण नहीं किया। ये घोर अज्ञानता में फंसे हुए, गले तक भोगों में डूबे हुए संसारियों का प्रश्न है, क्योंकि उनके लिए भोग ही जीवन है। अब सोचते हैं जब गुरु कह रहा है कि ईश्वर की भक्ति करनी है तो भोग कम करने पड़ेंगे, कमाई कम करनी पड़ेगी, वक्त बचाना पड़ेगा। वक्त बचाओगे तो अब इसमें लगाओगे ना, आपके पास वक्त ही नहीं, इतना कमाई करेगी वक्त ही नहीं बचा आपके पास। तो इसलिए आपको अंदर से दहशत बैठती है कि अरे 1 घंटा सुबह 1 घंटे सायकाल मुझे ईश्वर की याद करनी पड़ेगी, तो झटका लगता है आपको, मेरे पास तो 15 मिनट भी नहीं, अभी तो टाइम कम है, इतने काम मेरे पास हैं करने के लिए, टाइम तो कम है मेरे पास ऑलरेडी, और 2 घंटे और कम कर दूंगा फिर मेरा क्या हाल होगा। डर लगता है, ईश्वर की भक्ति करने से डर लगता है। ये तभी तक है जब तक आपके अंदर सही समझ नहीं आई। तो इसलिए गीता के अनुसार या समता विलास के अनुसार जब आप सोचोगे, ऋषियों की इन बातों पर गहरा मनन करोगे, तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि में सत विचार बैठेगा। जो सत विचार बैठेगा तब आपको पता लगेगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं, देह छूट जाती है मैं बच जाता हूं। और देह स्थूल शरीर कहते हैं देह को, और मन को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसको कहते हैं अंतःकरण भी कहते हैं, उसको हृदय भी कहते हैं। तो ये मन बच जाता है, मेरी संपत्ति मन के अंदर है, क्योंकि सारे गुण अवगुण, सारा मोह, जो कुछ भी विकार हैं, जो कुछ भी आपके संस्कार हैं, वो सब मन के अंदर इकट्ठे हैं। तो ये मन भी बच जाता है, ये सूक्ष्म शरीर मेरे संग रहता है, इसीलिए इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार ही मेरी नई स्थूल देह तैयार होती है, और फिर यही क्रिया चालू हो जाती है। जो इस जन्म में है वह हर जन्म में यही क्रिया होती है। अब देह कभी पशु की मिल जाती है, कभी पक्षी की मिल जाती है, कभी मनुष्य की मिल जाती है, ये आपके कर्मों पर, इस जन्म के कर्मों पर, इस जन्म की सोच पर, इस जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है। तो इसलिए महाजी कहते हैं, प्रेमी तुझे मनुष्य देह चाहिए तो सतोगुणी संस्कार तू निर्माण करने की कोशिश कर। तो सतोगुणी संस्कार सत के द्वारा उत्पन्न होते हैं ना, और सत कहते हैं ईश्वर के, ईश्वर की भक्ति के बिना तो ये संस्कार बनेंगे ही नहीं तेरे। तो इसीलिए ईश्वर की भक्ति तेरी हो नहीं सकती जब तक कि तेरे अंदर ये अध्यात्म की समझ नहीं है, तो कर ही नहीं पाएगा। घंटे तो हिलाया आएगा तू, कहीं नमाज ही पढ़े आएगा जाके तू, लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा तू। ये काम तो कर सकता है, बहुत कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं और कत्ल भी कर रहे हैं, ये काम भी कर रहे हैं और बम भी फोड़ रहे हैं, तू भी ऐसी कर ले। जिसको ईश्वर की भक्ति कहते हैं, ना तेरी समझ में आएगी ना तू कर पाएगा। इसलिए शास्त्रों का पढ़ना, उनको समझना, चाहे सत्संग के माध्यम से समझो, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से समझो, अनपढ़ हो तो सत्संग के माध्यम से समझ लोगे, पढ़ ही नहीं सकते हम। यदि पढ़ सकते हो तो शास्त्रों को खुद पढ़कर मनन करने की कोशिश करो, सत्संग उसको समझने में सहायता करता है। इसलिए उन शास्त्रों का मर्म जहां समझ में आए, जो समझाने लायक हो, उसका सत्संग करो, क्योंकि इंप्लीमेंट करना है ना आपने। तो यदि आपने कोई पुस्तक कोई प्रैक्टिकल करने के लिए पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल करना है इसलिए उसको समझना ही पड़ेगा। तो ये अध्यात्म विद्या इसीलिए ये एग्जैक्ट विद्या है, परफेक्ट साइंस है, जिसमें आज तक परिवर्तन ना हुआ ना भविष्य में कभी इसमें हो सकता है, इसलिए परफेक्ट साइंस है। तो इस विद्या को मैंने समझना है, पूरी कोशिश पूरी लगन के साथ समझना है, क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल करना है। इस प्रैक्टिकल का नाम ही ईश्वर उपासना है। तो इसीलिए मैं जानता हूं मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज जीवन है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं जीवन चाहता हूं, परमानेंट जीवन चाहता हूं। तो ईश्वर भक्ति आपको परमानेंट जीवन देगी, मौत से बचा लेगी, सुख दुख से मुक्त कर देगी और आनंद में स्थित कर देगी, जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।